ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदातीशपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागर जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विश्वपदाय कृष्णस्य भूतले श्रीमते भक्ति विदान स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष सुनवादी पाश्चात्य दिशा हरे कृष्ण। आप लोग कृपया करके तरफ आगे आ गए पीछे जगह कम होने के कारण बुरा लग रहा है। हरे कृष्ण हरे आप लोग ना कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप में से कई लोग वरिष्ठ वैष्णव भी बैठे हुए हैं, उनके चरण कमल में वंदन करना चाहता हूँ कि आप लोग कृपा करके हमारे ऊपर अपने प्यार दृष्टि रखें और आप लोगों का दया दृष्टि से हम कुछ बताएंगे। श्रीमद्भागवतम जो है अमल पुराना है और श्रीमद्भागवतम का कोई भी श्लोक व्यर्थ नहीं बता रहे हैं। श्रीमद्भागवतम का एक श्लोक आधा श्लोक या एक शब्द भी हम लोग अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें तो जीवन सार्थक हो सकता है। आज का जो विषय है इसमें दो अंग में विभाजित हैं, दो अंग के ऊपर बात कर सकते हैं, दो टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना है क्योंकि तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, उनके बारे में हम लोग मनन करने की प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जब पत्नी आज्ञाकारी और पति एक निष्ठ होता है। बहुत ही सुंदर विषय, इसलिए सुंदर विषय है क्योंकि इस कौन के अंदर अधिकांश दिघोष एक्सटर्नल हो रहे हैं। आप लोग को पता है, कितने लोग पता है, देखो हाँ हमारे इस कौन के अंदर ये अधिकांश हो रहा है। जितना जल्दी शादी करते हैं उतनी जल्दी बर्बादी, शादी बर्बादी नहीं है। कृपया करके ये समझिएगा इसमें ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी को आदर सभी, शादी बर्बादी नहीं है। गृह में जो बर्बादी जो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए करता है वो बर्बादी है, क्योंकि आज के जो ब्रह्मचारी बैठे हैं वो भी एक माँ के कोख से निकले हैं और आज ये संस्कार यदि उन्होंने प्राप्त किए हैं वो भी माता पिता का ही देन है।
यदि माता पिता व्यकारी हो, एक निष्ठ हो, तो ब्रह्मचारी पक्का ब्रह्मचारी हो सकता। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ये थोड़ा सा कहानी बताना पसंद करूँगा, क्योंकि भागवतम दो जगह हैं जहाँ पर नींद बहुत तगड़ा है। कहाँ है दो जगह नींद बहुत ही तगड़ा, कहाँ कहाँ होता है? जैसे माला पर कहेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य, और दूसरा जैसे ओम नमो भगवते शब्द उच्चारण होता है, तही मित्र देवी आपको मन करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको देखेंगे, जैसे मैं देखूंगा वैसी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और यहाँ यदि हम सो गए तो पूरा विश्व में फेमस हो जाएंगे, यह शासन के ऊपर सो गए। तो कृपया करके आँख खोले रखेंगे ताकि मैं देख करके मेरे को प्रेम आएंगे। हरे कृष्ण। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा हम लोग जागृत होने के लिए उत्सुकता प्राप्त करने के लिए थोड़ा कुछ कहानी बोलेंगे। बताते हैं श्रीधर स्वामी पाद जो हमारे बीच में है, स्वामी के गुरु थे श्रीधर स्वामी, जो अभी हमारे बीच में नहीं है शारीरिक रूप से। तो उन्होंने एक सुंदर से एक कहानी बताया, सुनना पसंद करेंगे? कितने लोग सुनेंगे? अच्छा, बाकी लोग जो नहीं किए हैं नहीं सुनना चाहते, क्या करें, यहाँ कान खुला ही तो जाएंगे, थोड़ा बहुत सुन लीजिएगा। कहा उन्होंने कि गृहस्थ जीवन जो है कैसा है, उनका उदाहरण उनका टॉपिक है प्रतिष्ठान। आप कहते हैं कि जिस प्रकार गांव के अंदर, सिटी में तो ऐसा दिखने को नहीं मिलता है, गांव के अंदर बहुत ही सुंदर रूप से वहां पर क्या होता है, लकड़ी होता है, चूल्हा होता है, बाहर भी अंदर नहीं होता, बाहर चूल्हा होता है और वहां पर अपने रसोईया लोग। तो एक आय क्या किया मैया ने, आग के ऊपर इन्हें पतीला रखी, उसमें पानी गर्म, सर्दी का समय था और सर्दी के समय में होते हैं ठंड भी होते हैं, उस समय एक छोटा सा मैदक, क्या एक छोटा सा सुनाई नहीं पड़े मैदक, तो मैदक वो खेलते हैं अपना चरण करते हुए। तो जो आग में पानी रखा हुआ था अभी तुरंत रखा ही तो था, तो मैदक छलांग मारते थे उस पतीले के ऊपर पड़ जाते, कहाँ पड़ जाते हैं, मैदक को लगा रहे तो उसे है ना जलाशय कभी भी चौराहे इतना तो तैरने लग जाते। तो कुछ समय के बाद वही पानी थोड़ा गुनगुना, क्योंकि अभी के ऊपर थी थोड़ा गुनगुना, कहते हैं अरे बाप सर्दी में गुनगुना पानी मजा आ गया, उसमें और ज्यादा तैरने लग जाते थे, कभी सामने से तैरते कभी पीछे छलांग करके तैरते। लेकिन कुछ समय के बाद वही पानी बंद हो गया, तो वो जो मैदक था उस समय सूख बन गया। कभी सुना आप लोग मैदक का सूख, प्रयास मत करना थे, ठीक है हम उधर ही कुछ सुन लेते हैं फिर पाएंगे, तो मैदक का सूख बन जाता है। ये किसका कहना है? बाकी सिद्धांत की सरस्वती, तो उनको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो वजह से हम लोग दूसरा उदाहरण इसमें बताते हैं कि हुआ क्या। एक बार ऐसी चर्चा चल रहा है कि कौन सा आश्रम बड़ा है, तो कौन सा आश्रम बड़ा है, सब लोग तपत पढ़ते हैं, जब भी ब्रह्मचारी क्लास देंगे तो ब्रह्मचारी वाले क्लास देंगे, गृह मंदकूपम, और गृहस्थ क्लास देंगे तो कहते हैं गृहस्थ जो है सबको धारण करता है, गृहस्थी दान करता है, गृहस्थ बच्चे को पालन करता है, तो हर एक जो बैठते हैं वो अपना अपना टोली को बढ़ाने के प्रयास करते, ऐसा ही है यस नो, जो गलत है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के बारे में चर्चा करते हैं, ये वर्ण आश्रम धर्म यदि हम स्थापित नहीं करेंगे तो हम एक इंच आगे नहीं रह पाते। यही कारण है कि आज जो है गृहस्थ या जो नव युवक है गृहस्थ बनते हैं, जितना जल्दी गृहस्थ बनते हैं उतना जल्दी वर्णाश्रम सिस्टम स्थापना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप लोग आगमन करेंगे तो मैं भी सो जाऊंगा, तो कृपया करके आप मन ना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस आधे घंटे हम रोकेंगे आपको। आधे घंटे के बाद हम लोग मिल करके बाहर गए, आधे घंटे तो ऐसा सहन कर लिया। तो दूसरा उदाहरण उन्होंने बताया कि चर्चा करते करते तो हर एक दूसरे को बात कर रहा था, तो बीच में किसी ने बोल पड़ा, अरे अरे क्या बात है, कहते हैं गृहस्थ जीवन में क्या रखा हुआ, कौन क्या कह रहा था। उन्होंने उदाहरण लिखते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। ये वार्मिंग है, इसको गर्म करना पड़ता है क्लासेस के लिए, गर्म करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के बताते हैं कि शुरुआत में जब लोग गृहस्थ बनते हैं, शुरुआत में जब गृहस्थ बनते हैं या गृहस्थ बनने से पहले चुन लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप भी करना शुरू कर देता है, तो किसी महात्मा ने कहा वो क्या होता है, वो चंद्रमुखी जैसे शीतल होता है। तो गृहस्थ को कितना मुस्कुरा, और जो बाल प्रस्थी है थोड़ा सा सीरियस हो गया, यह हकीकत है। बातें इतना चलता है लेकिन किसी को समझ नहीं पाता, चंद्रमुखी शीतल होती, उनके बिना उनके बिना सहना, सब चिट्ठी आए पहले जगह मैंने चिट्ठी आया करता था, चिट्ठी फल करती है महीना चिट्ठी को चिट्ठा, तो वो समय को ज्यादा तिखता नहीं है, तो ज्यादा समय नहीं लगता उसमें, कुछ शादी से पहले कुछ समय शादी के बाद, मैं अनुभव के साथ बता रही हूँ, जिसमें मुझे शादी की और 17 साल ब्रह्मचारी भी रहे हैं, तो वो भी अनुभव, तो दोनों मिश्रण करके हम बताने की कोशिश। फिर कुछ समय के बाद चंद्रमुखी जब हो जाते हैं, उनके बाद तुरंत आते हैं सूरजमुखी। सूरज में क्या होते हैं, देखो सर्दी में तो सूरज अच्छा लगता है, लेकिन यही सूरज गर्मी में लोग गाली देते हैं, क्या चला करके रखते हैं, टैन हो जाते हैं, तो क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं, मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही रंग वैसे ही है। तो इस प्रकार से वो सूरजमुखी क्या होता है, क्योंकि आधार कृष्ण नहीं होता है, आधार भक्त नहीं होता है, आधार अपने इंद्रिय पवित्र नहीं होता है, केवल क्या है शारीरिक स्तर पे ही आधारित होता है, जिनके कारण क्या होता है वो ताप लगना शुरू होता है। कहां वो बात था कि कहती थी कि अरे अरे ठंडे खाना क्यों खा रहे, मैं गर्म कर लू आपके लिए, आप बैठे मैं ला करके देता हूँ, मैं खिला दू आपका जो बच्चा है वो शिष्ट मैं ले लूंगी, क्योंकि प्रेम बढ़ता है ना, शिष्ट खाने से प्रेम बढ़ता है। ये था चंद्रमुखी वाला कंसेप्ट। सूरजमुखी वाला कंसेप्ट आते हैं, कहते हैं हाँ जी खाना बन गया किचन में ले लीजिएगा, क्या हो गया कहां से ग्रह लग गया है, कहते हैं क्या करें बेचारा, होम मिनिस्ट्री है कैसे आगे आते हैं उसे करना पड़ता है, वरना घर का जाते करते। फिर कुछ समय यहाँ रुकता नहीं है, फिर आगे बढ़ता है, क्या होता है जी? कौन सा, अरे ज्वालामुखी। कहा था चंद्रमुखी, किसी को बात ही सुनाई नहीं पड़ता था, क्या बोल रही है दोनों, काना फूसी होता था, कि धीरे धीरे घर के अंदर वातावरण बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्यों तुमने शुरू हो जाता, फिर पड़ोसी बोलते क्या शादी करती है, अभी तो किया था शादी, ज्वालामुखी कौन कहता है, ये लड़की सिद्धांत सब उनका ये कहना अनिवार्य, उनका ये कहना क्या है अनिवार्य, गृहस्थ लोग दुखी ना हो, क्योंकि तो गृहस्थ के बारे में नहीं बोलिए, गृह मोदी के बारे में, कि जो गृह मोदी है जो केवल एक दूसरों का बाहरी आवरण देख करके आदृश होता है, उसी के ऊपर आधारित होकर अपने जीवन को बिताता है, वो गृह मोदी उनका जीवन शुरुआत नारकीय है, बीच में नारकीय होगा और अंत में महाप्रसाद होते हैं, तो अच्छा लगता है प्रसाद सुनते तो अच्छा लगता है, महाप्रसाद सुनने से क्या होते हैं रोते खड़े हो जाते हैं, तो महानारकीय हो जाते हैं, इतना दुखी जिंदगी हो जाते हैं कि सब लोग परेशान हो जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो चीज बता रहे हैं, उसके ऊपर आधारित होकर हम लोग आगे जाने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं कि जब पत्नी आज्ञाकारिणी होती है, हरे कृष्ण, पत्नी क्या होना चाहिए बोलिए, आज्ञाकारी। पहले भी इसमें बारे में वर्णन करेंगे। आज्ञाकारी का तात्पर्य क्या है? आज्ञाकारी का तात्पर्य यह है कि रिस्पेक्टिंग द हस्बैंड, कौन सा कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिस प्रकार एक पति प्रेम देते हैं पत्नी को उसी प्रकार उतनी प्रतिशत पत्नी वापस देती है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, क्या नहीं है, अरे बोलो तो सुनिए, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। जितने प्रेम पति देता है उतनी ही प्रेम पत्नी पति देता है। तो आज्ञाकारी पति तभी होंगे जब देखेंगे पति एक निष्ठ है, लंपत नहीं है। जब पति लंपत नहीं हो तो पति क्या करती है, वो रिस्पेक्ट करती है। वो रात को लेट तक इंतजार करेगी कि जब तक पत्नी नहीं आएगी तो भोजन नहीं पाएगी। लेकिन जिस दिन उनको पता चल गया कि पति जो है लंपत है तो क्या करेगी, आधा से ज्यादा वो खा लेगी। आप बेचारा आएंगे तो देखे यार इतना कम छोड़ा, क्योंकि जानबूझ कर भी करेंगे। दिल्ली के अंदर जो भागवतम कक्षा चल रहे हैं इसी के ऊपर है, बहुत ही सुंदर है, इतना डिटेल में उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन ये हकीकत है। कोई भी साधक एक दूसरे को आरोप नहीं लगा सकता है जब तक हम जिम्मेदारी ना लें। यदि हम जिम्मेदारी ना लें, हम एक्सपेक्ट करें कि कोई जिम्मेदारी ले, वैसा होता है, होता है कि नहीं, अरे हाँ ये तो बोलो होता है। एक कहावत में बताए गए हैं, वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स द सेम वे वी वांट टू बी रिस्पेक्टेड। हमको दूसरों को आदर उतना देना चाहिए जितना आदर हम, बोलिए रिपीट करिए, हमको दोस्तों को जितना हम, यदि हम आदर ना दे तो आदर मिलेंगे हमको, अरे हाँ ये ना बोलो। अच्छा ये चल के कोशिश करते हैं जानने की कि पहले ये हमारे पत्नी थी या पहले किसी की पुत्री थी, पहले किसी की बहन थी, उससे पहले वो भगवान के अंश थी, क्या है पहले तो भगवान के अंश है। यदि हम भगवान के अंश के नजरिया से नहीं देखेंगे, अपने पति के रूप के नजरिया से देखेंगे तो यहाँ ये समस्या खड़ा होगा। सर्वप्रथम पति पत्नी को क्या देखना चाहिए, कि भगवान के अंश क्या है। यदि हम भगवान के अंश के दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर लेते हैं तो ये समस्याएं क्या खत्म हो जाएगा, समस्या, क्योंकि हम लोग उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन, हिंदी में एक्सप्लॉयटेशन को क्या बोलेंगे, शोषण, उसमें शोषण है। वो वाइस वर्सा होता है, केवल पति पत्नी के ऊपर नहीं, कभी पति पति के ऊपर भी। और जिनके कारण हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान का भजन करना, वो हमारे कौन से घर में, प्रभुपाद जी बताते हैं जिस घर के अंदर लड़ाई होता है, किसके अंदर जो घर के अंदर लड़ाई होता है, उस घर के अंदर श्री, यश और विजय कभी भी प्रस्थान नहीं करता। क्या कहा हमने, ये चाहिए हम लोगों को, ये जो श्लोक चल रहे हैं पहला श्लोक से लेकर के आज के जो श्लोक चल रहे हैं इसी के बारे में चल रहे हैं कि लक्ष्मी को प्रार्थना करना चाहिए। लक्ष्मी को प्रार्थना करने से क्या होगा, घर में वृद्धि होगा। किस चीज का वृद्धि को बता रहे हैं, इसमें यश, श्री और विजय। तो जिनके कारण यह समझना जरूरी है, थोड़ा सा मनन करेंगे इसके बारे में। इसमें एक छोटी सी हमने उदाहरण लिए है, क्षमा करना, क्लास उनको कल रात को 11 बजे किसी ने कहा था कि क्लास देनी है, तो कल रात 11 बजे आज सुबह पता नहीं चल रहा था कि क्या करूँ नहीं करूँ, तो जितना हो सके मैं बताने की कोशिश करूँगा, बाकी हरीश वैष्णव बैठे हैं कुछ बोले बाद में तो सर सब सर्वप्रथम हम लोग उस विश्राम को लेते हैं जहाँ पर कई कई दशरथ महाराज से कौन बोलिए नाम उच्चारण करने से हमारा शुद्धिकरण होता है, कौन कई कई कौन थी इनके पुत्र किनके दशरथ याद है, थोड़ा सा लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कई लोग बहुत दूर हैं वापस आ जाइए, तो दशरथ महाराज के माँ और क्यों मिले थे दशरथ से, ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि विजय प्राप्त कराने के बाद, क्योंकि वहां पर बताए गए हैं दशरथ को विजय प्राप्त कराने का एक ही काम बहुत ही बहुत बड़ी है, और कहता है कि वरदान मांगना हमसे, मांगो क्या चाहिए, तो कैकेयी ने कहा जब भी समय होगा अवश्य मांगो, इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं ज्यादा खुशहाली में और ज्यादा परेशानी में किसी को वचन बोलिए, क्योंकि ज्यादा खुशहाली में किसी को वचन, जैसे बाइक है आकर के बोलेंगे ओ बाइक बहुत सुंदर है आपका ले जाओ ना, बहुत खुश था, देने के बाद कहते अरे बाप रे बाप एक ही तो था मेरे पास, तो ज्यादा खुशहाली में और ज्यादा परेशानी में वचन नहीं, लेकिन वहां पर दशरथ बहुत प्रसन्न थे, मांगो मांगो, हमने बोले हाँ मांगूंगा, दो गिरवी है जब भी होगा, तो ज्यादा लंबा ना जाते हुए केवल ये बताना चाहता हूँ कि अंततः हुआ क्या, उन्होंने ऐसे वरदान मांग ली कि सकले अयोध्या का महाफल कर दिया, एक रूप से भगवान का लीला है, लेकिन हमारे सोच हमारे समझ के लिए हमारे लेसन प्राप्त करने के लिए क्या है उसमें, अंततः वहां पर रामचंद्र भगवान जिनको वहां पर राजा बनने का अगले दिन राजा बनना था उनको वन में जाना था, तो वो दृष्टान है कि राजा वन में तो जा रहा था, घोषणा हो गया था कि चल रहा था, लेकिन सीता मैया भाग करके आती है, कहते हैं मेरे नाथ मेरे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, तो राम कहते हैं मैं शॉपिंग मॉल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ वन में जा रहा हूँ, और ये जो है हमारे मुझ में मैं और पिता और मेरी माँ के बीच में ये चर्चा है, इसलिए आज्ञा पालन करते हुए मैं निकल, तो वहां पर बहुत सुंदर वार्तालाप होता है जो सीखने योग्य है, रामचंद्र भगवान कन्विक्शन के साथ, कन्विक्शन को क्या बोलेंगे, दृढ़ता के साथ उन्होंने सीता मैया को कन्विंस करने की कोशिश की, प्रभावित करने की कोशिश की कि तुम घर पे रहो और चाहो तो अपने पति के घर पे जाओ, मेरे ससुर के घर चले जाओ, 14 साल के बाद मैं अवश्य ही वहां से पिक अप करूं, हम और आप होते हैं तो एक आए हम लोग इनकार कर देते, जाने दो भी कौन रहेगा जंगल, करते कि नहीं करते, लेकिन सीता मैया नहीं कहा, वो कहते हैं यदि आप भूल गए हो मैं याद कराना चाहती हूँ कि मेरा शादी जब हुई मेरे पिता ने कहा है तुम्हारा असली घर पति के घर है, कहाँ पे है पति के घर, और जितने भी होगा ऊपर नीचे सुख दुख लानी हाब वो सब तुमको वहां पे सहन करना पड़ेगा, किसने कहा महाराज जनक, ध्यान दीजिए जनक जो है वो 12 महाजन में से एक महाजन, उनका वचन कभी झूठा नहीं है, तो इस प्रकार से सीता मैया फिर रामचंद्र भगवान को दोहराते हैं, कहते हैं हाउ कैन आई डू दैट, मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, मेरे को तो आज्ञा मिला है, और यही नारी का धर्म भी होता है, जब भी घर में दिक्कत, अभी रिसेशन में काफी परेशानी है, काफी घर में धनराशि का अभाव, और इतना समय तक शायद किसी ने बिताया होगा, पति पत्नी दोनों साथ में 5 महीना समझ सकते हैं क्या होने वाले हैं, और खास करके हमारा भजन साधन जब ठीक नहीं हो तो वहां पर तो कला निसंदेह है, जिनके कारण इस रिसेशन के अंदर कितने लोग डिप्रेशन, टेंशन, हाइपरटेंशन, कितने लोग डिवोर्स तक भी पहुंच गए हैं। सीता मैया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कहते हैं कि मेरा जो जिंदगी है, मेरा जो जीवन है, वो आपको समर्पित है, आपके साथ दुख सुख लाभ हानि मैं साथ में ही बिताना चाहूंगी। और इस प्रकार से वो चल पड़ती, जिनको बाद में जब जनक माना जाकर के कहते हैं कि बेटी आपने ऐसा कार्य किया जो हमारे पूरे वंश गौरव के साथ वो अपने शरीर को उठा करके चल सकते। तो आज्ञाकारी जो है पत्नी केवल वो नहीं है, जब सुविधा हो तो आज्ञाकारी बनती है, जब असुविधा भी होते हो उनको आज्ञाकारी ही बनना चाहिए। तो सीता मैया से हम लोग को ये सीखना है कि किस प्रकार से इतना दिक्कतें होने के बाद भी उन्होंने क्या की, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जिनके कारण आज के दिन में पूरा रामायण का गाथा है। चलिए हम लोग दूसरा दृष्टिकोण देते हैं। रावण ने सीता मैया का अपहरण की, किसका अपहरण की बोलिए तो सही, सीता मैया का। जब सीता मैया का अपहरण उन्होंने कर ली, अब जानते हैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लक्ष्मण रेखा पार करने के कारण है ना, कई चीज हमको सीखना चाहिए, हमारे माताओं को सीखना चाहिए, कई चीज हमारे प्रभु को भी सीखना चाहिए कि वहां दोनों शिक्षाएं। लक्ष्मण रेखा पार करके वहां पर रावण किसका वेश धारण करके आए थे, आप समझ रहे इस बात को, आंख बंद करके साधु को केवल अपना लेना यह भी कोई सिद्धांत नहीं है, उनको परखना जरूरी है, वरना क्या होगा, यदि हम लोग आंख बंद करके विवेक ना डाल करके हम लोग सिद्धांत इस्तेमाल ना करके किसी को साधु को मान लेंगे गुरु, तो हुआ है बिखर में कल में कहीं हुआ है, करोड़ों ऐसे शिष्य हैं जो बिखर गए, कहीं जेल में है, कहीं चक्की पीस रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसलिए इसको भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि यदि हम लोग उसको परखेंगे नहीं तो क्या होगा, पीछे दोहराएंगे अपन, तो बोलिए लोभी गुरु सुनाई नहीं पड़े, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में हिलम फिलम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि यदि हम लोग अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग शास्त्र के ऊपर आधारित होकर के गुरु नहीं अपनाएंगे तो ये दशा होगा, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में हिलम। ऐसा हो रहा है, बहुत हो रहा है। इसलिए यहां पे जो साधु के वेश में आते हैं तो साधु गुरु होता है, साधु शिक्षा देता है, लेकिन वो वेश धारण करके उन्होंने क्या किया, एक वहां पर कलंक लगा ली साधु, जिनके कारण प्रभुपाद जी कहा करता था साधु का मतलब क्या है, सावधान। बोलिए साधु का मतलब क्या है, बोलिए साधु का मतलब क्या है, सावधान। यदि साधु कहीं जा करके बड़े बड़े प्लेट में पकवान डाल करके पाएंगे तो परोसने वाले के मन में संदेह आ जाएगा, भला ही डालेंगे, अरे महाराज खाइए ना, आप लीजिए कितना कार्तिक का महीना खाइए, लेकिन वो सोचती है या सोचता है कि कैसे तो साधु हमें तो कल ही पड़ा था, अतिहार भया सस्य प्रजल्पनियमा ग्रह जन संग चलोलियम च सभीर भक्ति याद करते हैं। साधु क्या है, कीड़ी के समान है जिनके ऊपर कई नजर पड़ते हैं, क्या कई नजर पड़ते हैं, हम लोग को पता नहीं होगा, इसीलिए साधु को परखना चाहिए। तो रावण वहां पर आकर के क्या किया, सीता को अपहरण कर ली, सीता को अपहरण करने के बाद वहां पर कई दृष्टान है, लेकिन में न जा करके वहां क्या किया उन्होंने, सीता मैया का अपहरण। रामचंद्र भगवान हनुमान के ऊपर बहुत ही विश्वास करता है, क्योंकि हनुमान क्या है, एक निष्ठ, तो हनुमान को कहते हैं जब भी मेरी पत्नी से आप मिलोगे तो पिता करती ये दे दीजिए, तो चिन्ह दिया था लोग जानते थे, तो हनुमान वहां पर पहुंचता है और मैया को प्राप्त मिलती है, मैया से कहते हैं कि आप चिंता मत करो भैया, मेरे पास इतना प्रभु की आशीर्वाद इतना शक्ति है, मैं आपको एक आए यहां से लेकर के प्रभु के पास प्रभु के चरण में मैं ले जाकर के आपको छोड़ूंगा। कितने बड़ी बात है। लेकिन भैया ने क्या कहा कि हाँ हाँ ले चलो मिलन होगा। क्या कहा उन्हें कि हे वत्स, वत्स कहते हैं हनुमान को, हे वत्स मैं इसे नहीं कर सकी। मैया ऐसा क्यों कहते नहीं, पराई पुरुष को स्पर्श नहीं करती। तो हनुमान के मन में संदेह तो नहीं, यही बात चल रहा होगा कि रावण को पकड़ के ले आई थी। एक तो पकड़ करके ले आए, मैं भी थोड़ा सा, मैं तो जबरदस्ती नहीं, लेकिन स्वतः हो आएंगे तो मैं छोड़ दूंगा, प्रभु के पास मिल जाएंगे, तो उससे बढ़िया बात क्या है। तो मैया बहुत ही सुंदर लेसन लेते हैं, कहते हैं रावण ने हमको उठा करके ले आए, वो जबरदस्ती उन्होंने किया, मैं स्वतः नहीं गई। यहां मेरा एक चॉइस है, मैं आपके कंधे में बैठ सकती हूं या भक्ति सिद्धांत के सरस्वती कुमार कहते हैं जब भी एक इंपॉर्टेंट निर्णय जब लेनी होती हो हमको शास्त्र के ऊपर आधारित होना चाहिए। और जो भी निर्णय अच्छा हो यदि 5 सेकंड के अंदर उसको नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, माया हमारे बुद्धि के ऊपर प्रभाव। तो ध्यान दीजिए ना, अलार्म जब बजते हैं 3 बजे का, आंख खोल दीजिएगा तो क्या करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बस 5 मिनट और आंख को तुरंत खोल के रखिएगा। वहां गोपी जन कहती थी कि ब्रह्मा जी तुमने क्या किया, ये क्या कहते हैं पलके बोलते हैं, तुमने ये देख करके कितना महान अपराध कर ली, और यहां तुम कहती है देख करके कितना मजा आ गया, कहीं पर भी नींद आ जाते, क्लास में भी प्रसाद के समय तो नहीं होता, होता होगा प्रसाद देते नहीं। तो सीता मैया कहती हैं कि यहां मेरा चॉइस है, जो भी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो दुरुपयोग जब करता है उनका हनन होता है, हानि होता है। ध्यान से समझे इस बात को, अच्छे साधक बनने के लिए हमको कोशिश करना पड़ता है। क्या क्या करने के लिए, अच्छे साधक बनने के लिए कोशिश करना पड़ता है। वैसे ही चलते फिरते आयाराम गयाराम बनना है तो कुछ भी कर, इसलिए कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं छोड़ना चाहिए, गिर भी जाते हैं कोई बात नहीं, पुनः उतनी भी कोशिश करनी। यहां पर सीता महारानी एक लेसन दे रहे हैं कि हम अपना जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग जब हम करेंगे तो हमारा दिक्कतें होंगी। आसान है पद भ्रष्ट होना, इसलिए सीता महारानी कहते हैं कि मैं यहां नहीं कर सकती क्योंकि यहां मेरा इच्छा है, यहां पर वहां मेरी इच्छा नहीं है। इसलिए पूरा प्रसंग के बारे में बता रहे हैं, यदि हम लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे, लक्ष्मी से नारायण प्रसन्न होंगे, उसमें क्या होगा, गृहस्थ जीवन सुखद जीवन, सुखद इन द सेंस भगवान को केंद्रित करते हुए नहीं कर सकते, अन्यथा मुश्किल है। दूसरा हम लेंगे कि किस प्रकार यहां पे कितने देर में विराम देना है, नौ बजे, अरे कृष्ण अभी तो शुरू किया नहीं हमने, चलिए इसको पढ़ करके विराम देंगे। किसी ने बहुत ही सुंदर संत ब्रज के अंदर उन्होंने सुंदर चीज लिखा है, आप लोग सुनने की प्रयास करिए कि कितने सुंदर लिखा उन्होंने। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं साधक, क्या करते हैं प्रार्थना करते हैं साधक, कहते हैं मेरे सारी पीड़ाएं छीन लो हे प्रभु, हे प्रभु मेरे सारी चिंताएं छीन लो। प्रभु क्या कहते हैं, मुझे छीनने की क्या जरूरत है, तुमने साथ लिए घूम रहे हो तुम ही क्या थे। हम लोग क्या कहते हैं, समस्या का हम लोग समाधान नहीं बनना चाहते हैं, हम लोग समस्या का समस्या को और बड़ा समस्या बनाते हैं। छोटी सी दिक्कत थी, छोटी सी परेशानी थी, सब्जी में नमक नहीं था, कौन सी बड़ी बात है, नमक लेके डाल भी सकते हैं, लेकिन उस नमक के कारण पूरा घर बिखर गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ, यहां बोलो, छोटी छोटी चीज। भक्तिमत ठाकुर कहते हैं, एक बड़ा पत्थर ढलांग जब होता है, एक छोटा पत्थर डाल करके उस बड़े पत्थर को टिकाएगा। सुना आपने क्या कहा? बड़ा पत्थर जो है, एक छोटा पत्थर डाल करके उसको टिकाया जाता है। जितने भी छोटे छोटे नियम हैं, वो बड़े नियम को टिकाने की सहयोग देता है। मत सोचना कि छोटा नियम वैसे चल सकता, मैं तो ब्रश के अंदर हो, मैं कुछ भी कर सकता हूं या कुछ भी कर सकती हूं। सावधान, ब्रश के अंदर अच्छी चीज करेंगे तो उनका कई गुना लाभ होगा, और बुरे चीज करेंगे तो उनका भी अपना गुना मिलेगा। इसलिए ब्रश के अंदर तो उनको 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 गुना हमको सतर्क रहना पड़ेगा। कहते हैं आप पकड़ के रखे हैं, मैं तो नहीं दिया आपको, मैंने तो नहीं बोला था कि प्रजुर्ता करो, मैंने तो नहीं बोला था किसी का निंदा करो, तुम करना चाहते हो, इसलिए तुमको ही छोड़ना है। इसीलिए सदुपयोग या दुरुपयोग हमारे बस की बात है। आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं मैंने कहा मुझे सहन शक्ति दो, धीरज दो। क्या मांगते हैं? सहन दे दो, धीरज दो, प्रभु कृपा करे, कृपा, लोग मांगते रहते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें? कहते हैं धीरज आसमान से नहीं टपकता। कहां से नहीं टपकता बोलिए? धीरज आसमान से नहीं टपकता, फिर कहां का है वो? हैं, धीरज कहां का है? कहां का संपत्ति है? कहते हैं परेशानियों के बीच में उपजता है, उपजता है, अंकित होता है। वो परेशानियों में गुजरते क्या होता है? वो अंकित होता है। क्या चीज? धीरज। हाँ, धन्यवाद। उपजता, उपज, जो भी है, आप जो से बोलेंगे काफी लोग सुन लेंगे। लिखा तो वही है, लेकिन जैसे मैंने कहा था, तो कहते हैं जब परिश्रम में हम लोग गुजरते हैं, परेशानी में गुजरते हैं, और कृष्ण भावान्वित में रहते हैं, तो क्या होता है? वो परिपक्व हो जाते हैं लोग। कभी भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जब से भक्ति में आए हैं परेशानी ही परेशानी है। कितने लोग मानते इस बात को? अधिकांश मानते हैं, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे कि लोग बोले जा रहे परेशानी में है, वो तो हंसते रहते। आजकल परेशानी बाहर नहीं है, परेशानी यही है कि लोग क्या बोलेंगे। मेरा परेशानी क्या है कि लोग क्या बोलेंगे। बात सच है कि झूठ है? अरे हाँ, यहां तो बोलो। बहुत ही दिक्कतें में चल जाओ। आगे क्या बताते हैं कि क्या है ये परेशानियों में चलते ही ये क्या अंकित होता है, और हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। परेशानियों से उठता है और उसे हमें खुद ही क्या है उगाना पड़ेगा। तो कहते हैं मुझे खुशियां दो। तो क्या कहते हैं भगवान? कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं, खुशी तुम्हें अपने अंदर से उगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? ये बाहरी जाकर के हम लोग जब वो शांति ढूंढते हैं या खुशी ढूंढते हैं, खुशी हमारे हाथ में नहीं आता है। प्रभुपाद जी कहा करता था, ये मृग तृष्णा है, चर्बिता चर्बिना नाम, वही चीज को चबाते चबाते हम लोग थूक लेते हैं, जैसे गन्ने को चबाते हैं, रस पी लेते हैं और उसको त्याग देते हैं। उस त्यागे हुए क्या बोलेंगे उसको? वेस्ट है। उसको लेकर के पुनः मुंह में डालेंगे तो क्या मिलेगा? अरे बोलो तो सही, रस मिलेगा, हाँ कि नहीं? कुछ नहीं मिलेगा। चर्बिता चर्बिना नाम, ये पहली बार नहीं है पति पत्नी बने, पहली बार नहीं है कि हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, पहली बार नहीं है कि हम लोग समोसा खा रहे हैं, जो हमारे सर्वभौम कहते हैं समस्या। समोसा को क्या बोलते हैं? समस्या बोलते हैं, खाते खाते समस्या बोलते हैं। तो चर्बिता चर्बिना, यदि इस दृष्टिकोण को हमने सही नहीं किया तो हम कहीं भी सही नहीं होगा, एक नहीं कई गलती होगा। बस एक दो लाइन बोलकर के विराम देंगे, जानते सब लोग धीरे की ओर देख रहे हैं, तो दो लाइन आप बोलकर के विराम देंगे। अनुमति है दो लाइन बोल सकते हैं? क्योंकि 9 बज गया आपको। अजी आधा घंटा बोलो
सब लोग देखो कितना लटका दिया है।
तो आप ही इसको बोल के विराम देंगे, कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। इसमें बता रहे हैं कि अगले क्या बता रहे हैं, संसारी चीजों में आपत्काल का आनंद है, मेरी याद के सिवाय किसी और चीजों में तुझे सदाकाल। यहां पर बता रहे हैं कि किस प्रकार अंदर जाकर के हमको मिलेगा। ठीक है, फिर मुझे यह शक्ति दो तो देना कि मैं दूसरों से उतना ही प्यार करूं जितने की तुम मुझसे करते हो। आप सुन रहे प्रश्न, मैं दूसरे से उतने ही प्रेम करूं जितना तुम के प्रभु जितना तुम हमसे करते हो। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, तुम मेरी दिया हुआ प्यार जितना बांटोगे, उससे कई गुना प्यार तुम्हारा अंदर सता ही बरसेगा। तो ये था, कोशिश हमने किया जितना कम समय में। तो आपके बीच में कोई प्रश्न है या वो जो डिसीजन है कि अपने कितनी देनी चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई प्रश्न है आपके बीच में? पीछे प्रश्न है किसी का? हाँ पूछिए, आगे आके पूछेंगे तो सुनाई पड़ेगी, माइक यदि नहीं है तो। आप लोगों से नंबर विनती है, हम लोग दो मिनट बैठ जाएंगे। दूसरों को प्रेम करना चाहिए, विश्वास सुना हाँ हाँ जी हाँ जी आपने जो बोला वही मैंने बोला था, उसमें और बताऊं? अच्छा चलिए, इसको बोल करके विराम देंगे। पांच उंगली के बीच में लड़ाई हो गया था, किसके बीच में? बोलिए बोलिए, पांच उंगली के बीच में लड़ाई हो गया था। लड़ाई ये क्या था कि मैं इनमें से कौन बड़ा, बोलिए कौन? बातें नहीं हरे कृष्णा जो बैठे हैं शांति से, बस दो मिनट में विराम दे। पांच उंगली में लड़ाई हो गया था वो साबित करने के लिए कि कौन बड़ा। तो जो छोटे उंगली हैं कहते हैं तुम लोग बातें करते रहो, मैं बताना शुरू करता हूँ कि कैसे बड़ा। कोई व्यक्ति था सामने, वो कहते हैं बताओ कि मैं बोलूंगा कि आप में से पांच में से कौन बड़े हैं। तो छोटे उंगली कहते हैं सबको जब सत्कार होता है, सबको हम लोग प्रणाम करते हैं तो कौन कहलाता है? तो मैं आता हूं पहला, इसलिए मैं बड़ा। दूसरा उंगली कहते हैं पता नहीं छोटी में बड़ी बात, छोटी है वैसे बातें करते हैं नादान जैसे। कहते हैं जब पैसे मिलते हैं लमसम मिलते हैं कुछ ज्यादा इकट्ठे हो जाते पैसे, हम लोग अंगूठी बनाते हैं, अंगूठी बोलते हैं अंगूठी अंगूठी रिंग, तो किसके सिर पे चढ़ाते हैं? मेरे सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, इसलिए नहीं बड़ा। तीसरा कहते हैं तुम लोग बकबक करते रहोगे, तुम देख करके बताओ कौन बड़ा। मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, कौन बड़ा? इस देश वाला। चौथे ने कहा जहां शासन करना होगा किसका इस्तेमाल करते हो तुम? दो रसगुल्ला तुमने कैसे प्राप्त की, मेरे को मिलना चाहिए। अच्छा कीर्तन कैसे कर लेते हो, मैं तो हमको करना चाहिए था। तो चारों ने बोल दिया, पांचवा कहते हैं अच्छा मैं मोटा हूं इसलिए तुम हंसते हो हमारे ऊपर, मैं मोटा हूं इसलिए हंसते हो, लेकिन मेरे बिना तुम आइसक्रीम खा के दिखा लो। तो सब लोग चिल्ला करके अच्छा मोटे तुम बड़े, बोला नहीं तुम्हारा बिना मैं भी अधूरा, तुम्हारे बिना बोलिए तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा। प्रभुपाद जी जाते जाते रस तत्व के ऊपर चर्चा नहीं किया उन्होंने, इराशी स्थली में जाकर के वहां पर लीला के ऊपर मनन करो। द्रौपदी जी जाते जाते कहा कि आपका प्रेम कभी मेरे पास आएगा, व्यतीत होगा, मेरे को प्राप्त होगा कि कितने एक दूसरे के बीच में प्रेम रखोगे। योर लव विल बी शोन टू मी ऑन हाउ मच यू कोऑपरेट विद अदर्स। हुआ क्या है, कुछ लोग गए द्रौपदी जी के पास सेवा करने के लिए, कोई चरण दबा रहा था, कोई उनका थाई, क्या बोलते हैं उसको, जंगे दबा रहे थे, कोई कमर दबा रहा था, कोई छाती मालिश कर रहा था, कोई गर्दन को नहीं दबाया, उन्होंने सिर को दबा रहा था। इस प्रकार से एक नंबर जो पांव को दबा रहा था वो सोचा मैं जोर से दबाऊंगा तो सिर जो दबा रहा है उससे ज्यादा मैं सेवा करूंगा, तो शक्ति लगाने लगे, पैर वाला जोर से दबाने लगे और जंगे वाले ने जोर से दबाने लगे और सिर वाला जोर से दबाने लगे। हम सोचते हैं कीर्तन मैंने अच्छा कर लिया, अरे बाबा जब मैं आ गया तो रावण भी रावण नहीं रहा, उनका सर्वनाश हो गया, 10 सिर, हम तो 1 सिर वाले हैं। तो ये तो लंबा चल जाएगा, बस व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहूंगे तो चलते। मैं जानता प्रश्न सभी लोगों के लिए पूछा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपने ध्यान पूर्वक सुना और मेरे वचन में त्रुटियां होगा तो क्षमा कर लीजिएगा और आशीर्वाद बनाए रखिए कि इस प्रकार से सेवा करता है। ग्रंथराज मद्भागवतां की परितपावन शिला प्रभुपाद की।